अभिमान यही चाहता था कि वो किसी भी तरीके से बस आशिका को अपने साथ काम करने के लिए मना ले। जब आशिका उससे मिलने आई और उसने अभिमान का पूरा प्रोजेक्ट सुना तो आशिका ने उसका काम करने से मना कर दिया था। वो नहीं चाहती थी कि वो किसी की बर्बादी का कारण बने। आशिका ने अभिमान के काम को करने से सीधे सीधे मना किया और फिर वहां से चली गई थी। अभिमान ने रचित को आशिका के पीछे भेजा ताकि वो उसे मना सके। रचित एआर एम्पायर से बाहर निकल ही रहा था कि तभी अचानक आशिका दौड़ते हुए उसके पास आई और उसने उनका प्रोजेक्ट करने के लिए हाँ कह दिया था। जैसे ही आशिका ने हाँ कहा, रचित हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा। उसने तुरंत पूछा, आर यू श्योर? आई मीन, मैं तुम्हें मनाने के लिए ही आ रहा था, पर मुझे लगा था कि मेरे लिए ये बहुत मुश्किल होने वाला है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम खुद से आकर हाँ कहोगी। आशिका ने गहरी सांस ली और फिर दरवाजे की तरफ देखा। वो काफी घबराई हुई भी लग रही थी। उसने जल्दी से अपना चेहरा वापस रचित की तरफ किया और कहा, अंदर बैठकर बात करें मिस्टर कपूर। रचित को लगा कि आशिका किसी चीज से घबरा रही है। बात करते वक्त वो बार बार बाहर की तरफ देख रही थी, तो रचित ने भी ज्यादा कुछ नहीं बोला और हाँ में सिर हिला दिया था। वापस मीटिंग रूम में आने के बाद आशिका ने राहत की सांस ली। अंदर आते ही उसने पानी का ग्लास एक झटके में खत्म कर दिया था। आप रिलैक्स कीजिए, मैं अभिमान को बुलाकर लेकर आता हूँ, रचित बोला और वहां से बाहर चला गया था। वहीं आशिका के चेहरे पर अभी भी वही घबराहट के भाव थे। उसने अपने दोनों हाथों से अपने सिर को पकड़ रखा था। वो मन ही मन बोली, रिलैक्स कर भी कैसे सकती हूँ जब बात जान परट की पड़ी है। जिस चीज से पीछा छुड़ाकर आई थी, सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी यहाँ मेरे पीछे आ जाएगा। आई होप कि ये बस एक इत्तफाक हो, वरना मुझे अब भागकर कहीं और नहीं जाना है। आशिका ने अपनी आंखें बंद की और थोड़ी देर पहले की बातें सोचने लगी। अभिमान को मना करने के बाद जब वो मीटिंग रूम से बाहर निकली थी, तब थोड़ा इरिटेट फील कर रही थी। जाते वक्त उसने एक नज़र आशी की तरफ देखा, जो मीटिंग खत्म होने का इंतजार कर रही थी। आशिका ने उसकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया और लिफ्ट से नीचे जाने लगी। अजीब लोग हैं, एक तो इलीगल काम करते हैं, ऊपर से बोलते हुए भी शर्म नहीं आती। कितनी आराम से हायर करने की बात बोल रहा था, जैसे यहाँ कोई मजाक चल रहा हो। इन्हें क्या लगता है कि ये पैसे के दम पर मुझसे कोई गलत काम करवा लेंगे? मुझे थोड़ी देर और रुकना चाहिए था और उस कंपनी का नाम पता करना चाहिए था जिसे ये बर्बाद करना चाहते हैं। कम से कम मैं उन्हें अवेयर कर सकती थी, आशिका खुद में बड़बड़ाते हुए बोली। उसे अभिमान पर गुस्सा आ रहा था। थोड़ी ही देर में वो एआर एम्पायर्स के गेट तक पहुंच चुकी थी। जाने से पहले उसने बिल्डिंग को एक बार फिर से देखा और अपने चेहरे पर मास्क लगा लिया था। थोड़ा आगे जाने पर उसने टैक्सी बुलाने का सोचा, लेकिन वहां ट्रैफिक जाम लगा था। ट्रैफिक में फंसे हुए ज्यादातर लोगों ने अपनी गाड़ी के शीशे डाउन कर रखे थे। आशिका ट्रैफिक क्लियर होने का इंतजार कर रही थी, तभी उसने देखा कि उससे थोड़ी ही दूरी पर खड़ी एक गाड़ी का शीशा नीचे हुआ था। जैसे ही उसने बैक सीट पर बैठे आदमी की तरफ देखा, तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई थीं। गाड़ी की पिछली सीट पर कोई और नहीं, बल्कि स्काई बैठा हुआ था। क्या ये मेरे पीछे यहाँ तक आया है? अरे नहीं, पर इसे कैसे पता चला मैं इंडिया आई हूँ? आशिका ने जल्दी से कहा। स्काई को सामने देखकर वो काफी घबरा गई थी और दौड़ते हुए वापस एआर राजवंश की तरफ जाने लगी, जहां वो रचित से टकरा गई थी। स्काई से बचने और फिलहाल उस सिचुएशन से निकलने के लिए आशिका ने यही सोचा कि वो ये काम करने के लिए हाँ कहते, और उसने वही किया था। उसके बाद रचित के साथ वो ऊपर आ गई थी और अभिमान के आने का इंतजार करने लगी। अगले 5 मिनट में अभिमान उसके सामने था। अभिमान के चेहरे पर विक्ट्री स्माइल थी। उसने आशिका की तरफ देखा और बौहें उठाकर कहा, तो तुम काम करने के लिए मान ही गई? वैसे भी जब सामने वाला आपके मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार है, तो मना करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो क्या कीमत लगाई है तुमने अपने काम की? सिक्योरिटी, आशिका ने जवाब दिया। अभिमान और रचित को लगा था कि आशिका एक लंबी चौड़ी कीमत मांगेगी, लेकिन उसके मुंह से सिक्योरिटी शब्द सुनकर वो दोनों उलझन भरी निगाहों से उसकी तरफ देखने लगे। आशिका ने सिर हिलाया और सख्त अंदाज में कहा, मुझे सिक्योरिटी चाहिए मिस्टर राजवंश। अगर मैं आपके लिए काम कर रही हूँ, तो मुझे ऑफिस से लाने और ले जाने के लिए कोई ना कोई आना चाहिए, वो भी पूरी सिक्योरिटी के साथ। रही बात काम की कीमत की, तो मैं सैलरी लेना ज्यादा पसंद करूंगी। बोलते हुए उसने रचित की तरफ देखकर कहा, मिस्टर कपूर टेक टीम से हैं, फिर भी आपका काम नहीं कर पाए, इसका मतलब मैं उनसे ज्यादा टैलेंटेड हूँ। मैं बहुत ज्यादा डिमांड नहीं करने वाली, लेकिन उनसे डबल सैलरी डिजर्व करती हूँ। अभिमान और रचित ने यही सोचा था कि आशिका अपने काम की करोड़ों में कीमत बताने वाली है, और ये कीमत कोई ज्यादा भी नहीं होने वाली थी, क्योंकि हैकर्स जो काम करते थे वो काफी सीक्रेटली होता था। इसके लिए वे चाहे जितनी कीमत डिमांड करना चाहें कर सकते थे। अभिमान भी पैसे खर्च करने के लिए तैयार था, लेकिन आशिका ने जो मांगा था वो काफी कम था। आर यू श्योर? क्योंकि बाद में पीछे हटने का रास्ता नहीं होगा, और ना ही तुम ये कह पाओगे कि मैं तुम्हें कम पैसे दे रहा हूँ, अभिमान बोला। बस मुझे इतना ही चाहिए, और मेरी सिक्योरिटी का खास ख्याल रखा जाए। मैं नहीं चाहती कि यहाँ किसी को पता चले कि मेरी आइडेंटिटी क्या है, तो आप मुझे एज ए एम्प्लॉई की तरह इंट्रोड्यूस करवाओगी, आशिका बोली, जिस पर अभिमान ने तुरंत हाँ में सिर हिला दिया था। अभिमान बाकी राजवंश फैमिली के लोगों से अलग था, हालांकि उनकी जो पावर और पोजीशन थी उसके चलते उनके घर के बाकी लोग सिक्योरिटी के साथ ही चलते थे, लेकिन अभिमान अभी भी बिना सिक्योरिटी के ही रहना पसंद करता था। एक चीज उसे अभी भी हैरान कर रही थी कि आशिका की पहचान पहले से ही छुपी हुई है। ऐसे में उसे किसी से क्या खतरा हो सकता था कि जो वो सिक्योरिटी को लेकर इतनी पजेसिव हो रही थी। आशिका उसका काम करने के लिए मान गई थी। फिलहाल अभिमान के लिए यही काफी था, इसलिए उसने ज्यादा सवाल नहीं पूछे। उसने बिना किसी शर्त के आशिका की बात को मान लिया था। ठीक है, तुम्हारी सिक्योरिटी में अपॉइंट करवा दूंगा। रही बात तुम्हें ड्रॉप इन पिक करने की, तो अपना एड्रेस बता देना, कोई ना कोई तुम्हें पिक करने के लिए आ ही जाएगा, अभिमान बोला। आशिका ने जवाब में हाँ में सिर हिला दिया था। उसके बाद रचित आशिका को टेक लैब दिखाने के लिए चला गया था, तो वहीं अभिमान कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स तैयार करवा रहा था। आज का दिन उसके लिए अच्छा साबित हुआ। हाँ, ये बात अलग थी कि आशी अभी भी उसके केबिन में बैठकर अभिमान के आने का इंतजार कर रही थी। वहीं इशिका और अभिमन्यु अपने काम से फ्री होने के बाद एआर एम्पायर्स पहुंचे थे। अभिमान को जैसे ही सिक्योरिटी गार्ड ने उनके आने की खबर बताई, वो खुद उन्हें लेने के लिए सामने पहुंचा। अभिमन्यु और इशिका को साथ में देखते ही अभिमान ने छोटी सी स्माइल दी और अभिमन्यु के जाकर गले लग गया था। उसने मुस्कुराकर कहा, लगता है आज मेरा दिन सच में काफी अच्छा है। सॉरी, मैं आपसे मिले बिना ही आ गया था चाचू। कोई बात नहीं, काम हमेशा पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए और मुझे तुम पर प्राउड है कि तुम मेरे यकीन पर खरे उतरे हो, अभिमन्यु ने अभिमान से अलग होकर कहा। अभिमन्यु से मिलने के बाद अभिमान ने इशिका की तरफ देखा और अपना सर हल्के से झुकाया। आपको आंटी सुनने की आदत नहीं होगी, पर समझ नहीं आ रहा आपको किस नाम से बुलाऊं। आपसे मिलकर अच्छा लगा।
इशिका ने भी जवाब में हल्का सा मुस्कुरा दिया था। राजवंश फैमिली का वो पहला शख्स था जो सच में उसे इज्जत दे रहा था। इशिका को कहीं ना कहीं अभिमान में अभिमन्यु की झलक भी दिखाई दे रही थी। अभिमन्यु को एक बार देखते ही इशिका को समझ आ गया था कि अभिमन्यु क्यों उसे सबसे प्रोटेक्ट करना चाहता है। मुझे भी तुमसे मिलकर अच्छा लगा। राजवंस फैमिली में अभिमन्यु के अलावा तुम दूसरे शख्स हो जो रिश्तों की वैल्यू करना जानता है, इशिका बोली। अभिमान ने तुरंत ना में सिर हिलाकर उसकी बात को नकार दिया था। वो बोला, तब तो मुझे ये कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि आपकी थिंकिंग गलत है। मुझे किसी भी रिश्ते की वैल्यू नहीं है और ना ही मैं किसी रिश्ते को मानता हूँ। हाँ, चाचू को आप इसमें इंक्लूड मत कीजिए। इशिका ने अभिमन्यु की तरफ देखा। अभिमान काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड था। उसने किसी तरह का दिखावा नहीं किया और तुरंत अपने दिल की बात जुबान पर ला दी थी। ये ऐसा ही है, इतना कन्फ्यूज मत हो। अब तो समझ में आ गया होगा कि मैं यहाँ रहने के लिए क्यों आया हूँ, अभिमन्यु ने इशिका का हाथ पकड़कर कहा। हाँ बेशक, आप मेरे साथ रह सकते हो, मुझे खुशी होगी, लेकिन मैं आपकी बात नहीं मानने वाला हूँ। इनफैक्ट मैंने तो पूरी राजवंश फैमिली को सरप्राइज करने का तरीका भी निकाल लिया है। बस मुझे कुछ महीनों का टाइम चाहिए, तब तक आप भी खुद को तैयार कर लीजिए। सिद्धांत राजवंश की कंपनी के शेयर हम मिलकर खरीदेंगे, अभिमान ने काफी कॉन्फिडेंट होकर कहा। और उसका ये कॉन्फिडेंस आशिका की वजह से ही आया था। अभिमन्यु ने उस वक्त बहस करना सही नहीं समझा। उसने बात को बदलते हुए कहा, अब क्या यहीं खड़े रखने का इरादा है या अंदर भी लेकर जाओगे? मैं भी जाना चाहता हूँ, पर मेरी केबिन में आशी आई हुई है, अगर आप उसे झेल सकते हो तो बेशक चलते हैं, अभिमान ने लाचारी के साथ कहा। वो खुद आशी से परेशान हो गया था। ऐसे मुंह क्यों बना रहे हो जैसे शादी को 50 साल बीत गए? चलो अंदर चलते हैं, मुझे भी तुम्हारी वाइफ से मिलना है, इशिका ने हंसकर कहा। आशी का नाम आते ही अभिमान ने सच में चेहरे के भाव बिगाड़ लिए थे। वो इशिका की बात टालना नहीं चाहता था, इसलिए उसने हामी भरी और उन्हें अपने केबिन में लेकर गया। वहीं अभिमान के केबिन में बैठी आशी ने कदमों की आहट सुनी। वो जल्दी से खड़ी हो गई थी। उसे यही लगा कि अभिमान ही आया है। जैसे ही दरवाजा खोलने की आवाज आई, आशी फिर से गुस्से में चिल्लाने लगी थी। तुम चाहे मुझे कितना भी इग्नोर क्यों न कर लो, लेकिन आज मैं तुमसे हाँ करवाए बिना यहाँ से जाऊंगी नहीं। तुम इतना मीन कैसे हो सकते हो अभिमान, कि तुमने मेरी फैमिली को हमारी शादी का सच बता दिया? तुम्हें क्या लगता है ये सब करने से तुम्हारा पीछा छूट जाएगा? आशी लगातार एक सांस बोले जा रही थी, लेकिन जब उसके सामने अभिमान के साथ साथ इशिका और अभिमन्यु भी आए तो वो चुप हो गई थी। अभिमन्यु को किसी तरह की इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं थी, वैसे भी उसके बारे में सब जानते थे। आशी ने तुरंत अपने एक्सप्रेशंस को सॉफ्ट किया और मासूम सा चेहरा बना लिया था। वो अभिमन्यु के सामने आकर जबरदस्ती मुस्कुराते हुए बोली, अभिमन्यु चाचू, आज आप यहाँ कैसे? मैंने पहले आपको यहाँ कभी देखा नहीं है। नहीं देखा है तो अब देखने की आदत डाल लो, क्योंकि मैं यहाँ आता रहूँगा। मेरा छोड़ो, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? जहाँ तक मुझे पता है, मिस्टर सिंघानिया को पसंद नहीं है कि तुम अभिमान से आकर मिलो, अभिमन्यु ने सख्त लहजे में कहा। अभिमान की जिंदगी से जुड़ी हर खबर उसे रहती थी। यही तो मैं अभिमान को समझाने के लिए आई थी। अच्छा हुआ जो आप यहाँ पर आ गए। बोलिए इसे कि हमारी शादी को लेकर कोई स्टैंड ले। आशी ने अभिमन्यु की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देखा। मैं तो कब से स्टैंड लेने के लिए तैयार हूँ, बस तुम ही हाँ नहीं कह रही। डिवोर्स पेपर तैयार करवाए हुए हैं और मैंने पहले ही साइन कर दिए थे, बस तुम्हारे सिग्नेचर होने बाकी हैं, अभिमान सीधे सीधे बोला। मुझे तुमसे तलाक नहीं चाहिए अभिमान, मुझे तुम्हारे साथ रहना है, प्लीज मुझसे नाराज मत हो। जानती हूँ पास्ट में मैंने तुम्हारी इंसल्ट की थी, लेकिन उस वक्त मुझे इतनी समझ नहीं थी। अब मैं बड़ी हो गई हूँ,
मैं तुम्हारी हर एक गलती को भुलाने के लिए तैयार हूँ। बदले में एक छोटी सी चीज ही तो मांग रही हूँ कि तुम हमारी शादी को नाम दे दो। जब मैं इस शादी को एक्सेप्ट कर रही हूँ तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, आशी ने काफी प्लीडिंग वे में कहा। इस वक्त उसका चेहरा कोई देखता तो उन्हें यही लगता कि वो कितनी मासूम और भोली है। अभिमान ही निर्दयी इंसान है जो उससे शादी करने के बाद भी उसे छोड़ रहा है। इशिका ऐसे लोगों को अच्छे से पहचानती थी, उसकी जिंदगी में भी ऐसे काफी लोगों से पाला पड़ा था। आशी का चेहरा देखकर इशिका को आयशा की याद आ गई। वो भी ऐसे ही इमोशनली मैनिपुलेट करने की कोशिश करती थी। इशिका थोड़ी देर रिलैक्स करना चाहती थी और आशी की बातें उसे इरिटेट कर रही थी। उसने सख्त अंदाज में कहा, तुम्हें इस तरह अपने रिश्ते की बातें किसी और के सामने नहीं कहनी चाहिए। अगर प्रॉब्लम चल भी रही है तो आपस में बैठकर सॉल्व करो। मैं और अभिमन्यु इस मामले में कुछ नहीं कर सकते हैं। आशी का मुंह बन गया था, वो कुछ कहने के हालात में भी नहीं थी। उसने हाँ में सिर हिलाया और फिर अभिमान की तरफ पलटकर बोली, शाम को बात करते हैं अभिमान, मैं फ्री नहीं हूँ। अभिमान ने काफी बेरुखी से जवाब दिया। इस बार आशी कुछ नहीं बोली और वहाँ से चली गई थी। अभिमान ने इशिका और अभिमन्यु के सामने उसकी इंसल्ट की थी, वो इतनी आसानी से चुप नहीं बैठने वाली थी। तुमने ये अच्छा नहीं किया अभिमान राजवंश, तुम्हें इस शादी को निभाने के लिए दो ही शख्स फोर्स कर सकते हैं, या तो तुम्हारी मॉम या मेरे डैड। तुम्हारी मॉम कुछ नहीं कर पाई तो अब बारी मेरे डैड की है, उन्हें तुम्हें मजबूर करना ही होगा। आशी गुस्से में तेज सांस लेते हुए बोली, दो दिन पहले उसने ही निशा को कॉल करके उसे इमोशनली मैनिपुलेट किया था ताकि वो अभिमान को शादी पब्लिक करने और आशी को घर लाने की बात कहे। निशा ने अभिमान से इस बारे में बात तो की थी लेकिन अभिमान ने उन्हें भी टाल दिया था। मतलब साफ था कि निशा इस मामले में आशी की मदद नहीं कर सकती थी। तो अब आशी का एकमात्र सहारा मिस्टर आशुतोष सिंघानिया बचे थे और वो अब उन्हीं के पास जा रही थी। सिर्फ आशी ही नहीं, काजल भी पिछले दो दिनों से आशुतोष को इस बात के लिए फोर्स कर रही थी कि वो अभिमान को घर बुलाए और इस शादी के बारे में बात करे। थोड़ी देर में आशी घर पहुंच गई थी लेकिन एआर राजवंश से बाहर निकलने और अपने घर पहुंचने के बीच काफी कुछ बदल गया था। उसका चेहरा ऐसे हो गया था मानो वो कितना रोकर आई हो, बाल भी बिखरे हुए थे। उसकी ऐसी हालत काफी थी आशुतोष का दिल पिघलाने के लिए।